जय धवला, पुस्तक 10वी, लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सवसाहूणं, वेदग वेदग वेदगं, अवेदगं वेदगंत संसिद्धं, सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्छं वेदगमहाहियारमहं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पौड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 100 पर आ गए हैं, 100। कल हमने शुरू से ही उदीरणा के प्रकरण में अलग अलग अनुयोग द्वारों की चर्चा की थी। अब यहाँ पद निक्षेप और वृद्धि की बात चलेगी, यानी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य के बाद उपद निक्षेप की बात आती है। भुजगार में केवल अधिक हुआ, अल्पतर में कम हुआ, इतना ही हम देखते हैं, परंतु यहाँ उसमें और थोड़ी स्पेसिफिकली बताएंगे, यानी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि वगैरह उसकी बात करेंगे। ऊपर सूत्र पढ़ेंगे, पदनिक्षेप वड्ढियो कादवाओ, पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए। ये पदनिक्षेप एक अधिकार है और वृद्धि एक अधिकार है। इस सूत्र के आश्रय से मुख्यता को प्राप्त हुए पदनिक्षेप और वृद्धि का उच्चारणा के अवलंबन द्वारा प्ररूपण करते हैं, क्योंकि चूर्णी सूत्रकार ने तो करना चाहिए इतना ही लिख दिया है, उच्चारणाचार्य करके दिखा रहे हैं। यथा पदनिक्षेप का प्रकरण है, यानी ये दो दो अलग अलग प्रकरण होंगे, पदनिक्षेप का अलग और वृद्धि का अलग। उसमें ये तीन अनुयोग द्वार है, एक है समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबोध। समुत्कीर्तना दो प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। ये जध हुआ है और उत्कृष्ट हुआ है, उत्कृष्ट चाहिए, वो ध का घ और उत्कृष्ट नीचे उसका रह गया है, क्रु। उत्कृष्ट का प्रकरण है, यानी यहाँ उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि उसकी बात चलेगी, पदनिक्षेप की बात चल रही अपनी। तो कहते उत्कृष्ट में निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश, यानी ओघ से उत्कृष्ट वृद्धि, ओघ से उत्कृष्ट हानि उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। किसकी बात चल रही, किसमें वृद्धि और हानि की बात चल रही है, हा? प्रकृति स्थान में, स्थान यानी संख्या, नंबर ऑफ प्रकृतियां जितनी उत्तीर्ण हो रही थी, पहले कम हुई थी, फिर एक से मैक्सिमम अगर बढ़ जाए तो हम कहेंगे उत्कृष्ट वृद्धि हो गई, उसको वृद्धि कहेंगे, उत्कृष्ट वृद्धि। तो इस समुत्कीर्तना दो प्रकार की, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का भी प्रकरण चलेगा, उसमें दो प्रकार से कथन है, निर्देश है, ओघ और आदेश। ओघ से उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है इतना ही बता दिया। वो किसके होता है वो स्वामित्व में बताएंगे। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, यानी जैसे ओघ में भी उत्कृष्ट और जगह उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है, वैसे हर एक मार्गणा में अपनी अपनी उत्कृष्ट और जघन्य, जघन्य की बात नहीं, वृद्धि की और हानि की बात है, दोनों में उत्कृष्ट ही लगाना है। अब कहते इसी प्रकार जगन्य भी ले जाना चाहिए। अब ये उत्कृष्ट वृद्धि किसकी होती है वो स्वामित्व में बताएंगे। तो स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ये तो आसान है ना। एक प्रकृति का कर रहा था और मरकर देव मिल गया। तो कहते एक प्रकृति की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव मरकर देव हुआ और आठ प्रकृतियों की उदीर्णा करने लगा उसके उत्कृष्ट बुद्धि होती है। क्योंकि ये जो उदीर्णा करने वाला जो है आठ का ही क्यों कहा उसको, दस का क्यों नहीं कहा लक्ष्मी? दस वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है, परंतु समय दृष्टि के नौ का तो हो सकता है, तो आठ का क्यों लिया? भय और जुगुप्सा दोनों को लिया है, फिर भी नौ वाले को क्यों नहीं लिया, आठ वाले को क्यों लिया? बहुत अच्छा, द्वितीय उपशम वाला है। नौ वाला होगा वो वेदक समय दृष्टि हुआ, समय प्रकृति होगी उसकी। ये उदीर्णा एक की उदीर्णा करने वाला है वो तो उपशमिक यानी उपशम श्रेणी वाला जीव है, उसका द्वितीय उपशम चल रहा है। यक्षाइक वाला भी ले सकते वहां पर, यानी उसकी सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है इतनी बात ले ली तो उसके लिए अधिक से अधिक कितना होगा? तो आठ होगा। तो उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती, उसी के तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? नव प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव संयम को प्राप्त हो चार प्रकृतियों की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। यानी ये दो नौ में से चार तक आ गया उसकी बात ये। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? अब ये नारकियों की बात है। ओग से जघन्य में जघन्य कितने प्रकृति वाला होता है? तो एक वाला होता है, और एक से कितना बढ़ेगा उसको हम कहेंगे उत्कृष्ट बुद्धि। नारकियों में मिनिमम तो छह ही होते हैं, तो छह की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव दस की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। छह की उदीर्णा वाला कौन लेना? यहाँ पर शायक नहीं ले सकते क्योंकि उसको दस वाला बनाना है औपचमिक समय दृष्टि, तो उपशम काल समाप्त होने पर मिथ्या तो में गया और दस की करने लगा। उसी के तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? नारकियों की बात चली ना, तो नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव छह की उदीर्णा करता है उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। वहां भी दस दस वाला नहीं लिया था, यहां नौ की उदीर्णा करने वाला छह की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य देव और नव ग्रेवेक तक के देवों में जानना चाहिए। सामान्य तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? तिर्यंचों में जघन्य में जघन्य हमने पांच का देखा था, वो किसके होगा? शायक के होगा क्या औपशमिक के होगा? प्रेरणा बेन औपशमिक, शायक के क्यों नहीं होगा? शायक वाला तिर्यंच चौथा गुणस्थान वाला ही होता है, पांचवा नहीं हो सकता है, इसलिए पांचवा गुणस्थान में तिर्यंच को औपशमिक वाले को ही लेना है। तो पांच की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव दस की उदीर्णा करता है, यानी पांचवें गुणस्थान वाला उपशमिक समय दृष्टि तिर्यंच गिरकर मिथ्या तो में चला जावे और दस की उदीर्णा करने लगे उसकी बात ले। उसी के तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव हाँ, छह वाला, क्योंकि मिथ्या तो मैं भेजना है तो क्षायिक नहीं ले सकते, क्यों नहीं जाएगा? क्यों? उपशम काल समाप्त हुआ,
सात का हो गया, छह से सात वाला, क्योंकि उपशम काल समाप्त हो जाएगा।
हाँ,
तो उसका छह से सात का हो गया।
क्यों?
सम्यक्त्व का उदय हो
गया। सम्यक्त्व का उदय हुए बिना मिथ्यात्व का उदय कराना है। मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का और बहिर्जुगुप्सा का, चार बढ़ गए ना एक साथ, तो छह में से दस हो गया। उसको वैदिक सम्यदृष्टि नहीं कराना है, वैदिक सम्यदृष्टि का तो दस वाले स्थान ही नहीं है, दस वाला स्थान मिथ्यात्व में ही है। कल हमने देखा था ना शाम को, उपशम काल समाप्त होने के पश्चात तीन रस, आपने देखा, तीन रस थे। उसको जरूरी नहीं कि वेदक होकर फिर मिथ्यात्व में जावे, डायरेक्ट मिथ्यात्व में जाता है जो। तो उत्कृष्ट हानि किसके होती है? नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव पांच की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। नौ में से वो उपशम समय के काल में पांच करने लगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? अब ये तो मिथ्यात्व में ही है, तो आठ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव दस की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। मंजू बहन ये ख्याल में आती है बात? ये लब्धिया पर्याप्त जीव है तो उनमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही है, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन कौन से? आठ, नौ और दस, यानी दस नौ आठ। ये सात वाला यहाँ नहीं लेना, वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला होता है, उसकी बात यहाँ नहीं करनी। इसलिए आठ में से दस हो जाए तो उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हो गई, उसके लिए, उस मार्गणा के लिए। उत्कृष्ट हानि किसकी होती है उनके, उन्हीं में? हाँ, बहिर्जुगुप्सा, तो आठ का दस हो जाएगा और हानि में दस वाला आठ खा जाए। तो दस की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव आठ की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है, किसी एक जगह उत्कृष्ट अवस्थान होता है। यानी आठ में से दस होकर दस 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 करने लगा तो भी उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे, या दस में से आठ होकर लगातार आठ आठ करेंगे तो भी उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। ये बात ख्याल में आई ना आदेश से? हाँ, कोई प्रश्न है? देखो यहाँ क्या बात हो रही है, अपना अधिकार कौन सा चल रहा है? पद निक्षेप का। पहले हमारे भुजगार हुआ, कल भुजगार की बात की, भुजगार ने बढ़गा, किसके किस में बढ़ोतरी हो रही? स्थान की, प्रकृति स्थान उदीर्णा का प्रकरण चल रहा है। प्रकृति स्थान किसको कहते हैं? एक ही समय में, यानी एक काल में एक जीव के अधिक से अधिक कितने प्रकृतियों की उदीर्णा होती है। तो उदीर्णा तो उदय की अपेक्षा रखते हैं ना, तो जितने का उदय है उतने की उदीर्णा। यहाँ तो मात्र मोहनी की बात चल रही है, तो हमने देखा मिथ्यात्व में कितने कितने की उदीर्णा हो सकती है या उदय हो सकता है, तो 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, ये चार स्थान है। सात वाला है वो अनंत अनुबंधी रहित वाले को पॉसिबल है मिथ्यात्व। ऐसे हरेक गुणस्थान के सात साधन वाले के 9 का है, 8 का है, 7 का है, तीसरे में भी उतने स्थान है, इस तरह से ऊपर ऊपर चौथे में भी 9 का है, 8 का है, 7 का है और 6 का भी है। 6 का जो औपशमिक वाले को होता है या क्षायिक वाले को होता है। तो यहाँ अभी वृद्धि का प्रकरण है, पद निक्षेप यानी वृद्धि, उत्कृष्ट वृद्धि चाहिए, यानी वो मिनिमम से मैक्सिमम होने चाहिए। तो ओघ में पहले बताया कि मनुष्यों में उपशम श्रेणी से उतरते हुए एक का, ये चढ़ते हुए एक का स्थान आया, एक प्रकृति की उदीर्णा कर रहा था, वहीं पर मर गया और देव में गया, तो वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है। तो उपशम सम्यक वाले के चौथे गुणस्थान वाले के कौन कौन से स्थान हो गए? आठ, सात और छह। वेदक समय दृष्टि होता तो नौ, आठ, सात होते, परंतु यहाँ द्वितीयोपशम वाला मरा है, तो वहां द्वितीयोपशम के साथ देवमी गया और उसके मैक्सिमम बज गुप्सा दोनों को लेते हैं तो आठ वाला स्थान हो जाएगा, वो उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हुई। उत्कृष्ट हानि जो नौ वाला है और वो संयम प्राप्त करता है तो डायरेक्ट चार के स्थान पर आ गया। चार पर कौन सा ले, एक संज्वलन, एक वेद और एक युगल, और भय जुगुप्सा दोनों नहीं है, ऐसा जीव लिया। तो इसलिए नौ पैसे उसमें ले लिया, नौ में से ले लिया। वो उसको उत्कृष्ट हानि कही, ये सब ओघ की अपेक्षा बात की। अब आदेश में लेना है, नारकियों में मिनिमम कितने होते हैं, तो छह होते हैं, और उसमें से मैक्सिमम हो गए तो कितने हो गए, तो दस हो गए, तो छह किसके हो गए, औषमिक सम्य दृष्टि के। वैसे क्षायिक के भी होते हैं, परंतु हमको दस के स्थान पर ले जाना है तो उसको मिथ्यात्व में ले जाना है तो क्षायिक सम्यक दृष्टि तो नहीं चलेगा, तो औषमिक सम्यक जीव उसका छह वाला स्थान था, मिथ्यात्व में जाकर उसका दस वाला हो गया, तो उसको हम लेते हैं। यानी दोनों नहीं थे, दोनों का हो गया। वैसे भी तिरंचों में मिनिमम कितने का है, तो पांच का है, पांच में से दस हो गया, वो उसको उत्कृष्ट वृद्धि हुई। हानि में उल्टा नहीं ला, नौ वाला स्थान है वो छह में आ जाएगा, या तिरंचों में नौ वाला स्थान है वो पांच में आ जाएगा। अब हम मनुष्य त्रिक की बात करेंगे, ये अंतिम लाइन 101 पृष्ठ की। मनुष्य त्रिक में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, तो चार की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव। देखो चार की उदीर्णा कहाँ हो सकती है, छठा सातवा कौन होने चाहिए, यानी कौन सा समय दृष्टि, औषमिक या क्षायिक, क्यों, कौन कौन सी चार प्रकृतियां लक्ष्मी में, एक संज्वलन, एक वेद, एक युवक, और भयजुगुप्सा दोनों नहीं है, ऐसा जीव लेना, उसके चार प्रकृति का स्थान है। तो कहते हैं अन्यतर जीव पहले कितना था, चार की उदीर्णा करने वाला था, यानी औषमिक समय दृष्टि लेंगे हम इसको, और दस की उदीर्णा करता है, मिथ्या तो में गया है और भयजुगुप्सा दोनों का उदय शुरू हुआ है, ऐसा जीव लेना। मिथ्यात्व में गया, छठे सातवें में था, छठे में से मिथ्यात्व में गए, तो छठे में उसके चार की उदीर्णा हो रही थी, वहां दस की होने लगी, उसकी उत्कृष्ट वृद्धि हुई। पहले तो हमने एक से डायरेक्ट देव में भेजा था, अभी यहाँ एक से दस क्यों कराए, एक से नहीं चार से दस क्यों किए, एक से दस नहीं चार से दस क्यों कराए। हाँ, मनुष्य में कायम रखना है। ओग की अपेक्षा जब हम देखा था तो एक वाला देव में गया था, तो एक से आठ उत्कृष्ट वृद्धि हुई थी, अब यहाँ चार से दस करना है, क्योंकि मनुष्य में रहते हुए उसकी वृद्धि करानी। मार्गणा की बात चल रही नहीं अब, ओग से कहते वहां कोई किसी भी गति से कहीं भी जाए तो भी चलेगा, क्योंकि वहां जनरल बात है। उसी के तदनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है, ये नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव चार की उदीर्णा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। देखो दस वाला एकदम डायरेक्ट नो भयजुगुप से ऐसा नहीं होगा, ये उपशम यानी वो ऊपर के गुणस्थान में चढ़ता हुआ हर बार दस वाला नहीं लिया, नौ वाला लिया। हाँ, अनुदिश से लेकर यानी मनुष्य त्रिक की बात हो गई यहाँ पर, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है। अब अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में गुणस्थान तो कायम है चौथा ही, तो उसमें अधिक से अधिक दो की वृद्धि होगी ना, तो छह की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव नौ की उदीर्णा करता है। अब ये कैसा होगा, छह वाला कौन होगा? ना द्वितीय उपशम वाला है। और फिर नौ कैसा लिया उसकी, उसमें से वेदक हुआ, वेदक हुआ तो एक प्रकृति बढ़ गई उसकी, और भैजुगुप्सा भी बढ़ाना। शाइक वाला नहीं ले सकते, शाइक में दो ही बढ़ सकती थी। नहीं, मिथ्यात्व वाला दोनों का ही उदय था और दोनों का ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आगे पीछे भी होते रहते ना। हाँ, नहीं नहीं, वो पहले दस ऊपर चढ़ने वालों की पहले की बात करते हैं, अनुदेश की बात नहीं पूछ रहे हैं वो। हर बार नौ में से जो हानि में, नौ वाले से भैजुगुप्सा रहित वाले में ले लिया उन्होंने। तो हमने अनुदिश से वो देखा था, बुद्धि की बात देखी, उत्कृष्ट हानि किसके होती है? नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव, छह की उदीर्णा करता है। अब मुझे ये पूछना, कौन बताएगा? हाँ बता। हाँ अच्छा, तो क्षायिक हो जाएगा तो एक कम हो गई, और फिर दो भैजुगुप्सा दो कम हो गए, बराबर है ना? यानी कृतकृत्य में से शायिक हो गया और भैजुगुप्सा भी कम हो गए। किसी एक जगह उत्कृष्ट अवस्थान होता है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। यानी सम्यक के सन्मुख वाली बात नहीं लेना है, पर यानी दस वाले स्थान से डायरेक्ट उसको नहीं लिया है, वो ऑप्शन नौ वाले से ही लिया है, नहीं होता है ऐसा, लेना पड़ेगा क्योंकि कहीं पर भी वो दस वाले को तो लिया ही नहीं है। हाँ परंतु पहले हमने अल्पतर देखे थे, वहां दस वाले दस, वहां तो स्थानों की बात ही नहीं की थी। उत्कृष्ट हानि नहीं बताई थी, परंतु जब हमने इसका अल्पतर की बात देखनी हमको, उसकी वहां चर्चा नहीं है। आगे आएगी शायद बातें, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये तो उत्कृष्ट का प्रकरण हुआ, कहते हैं इसी तरह अनाहारक मार्गना तक जानना चाहिए। अब जघन्य का प्रकरण बता रहे हैं। जघन्य का प्रकरण है जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से जघन्य वृद्धि किसके होती है, तो नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव दस की उदीर्णा करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। और कहीं से नहीं लिया है, एक वाला दो वो नहीं लिया है, नौ में से दस में जघन्य हानि किसके होती है? तो दस की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव नौ की उदीर्णा करता है उसके जघन्य हानि होती है। मेरा प्रश्न समझ में है? दो वाला एक में आता है उसके भी एक से ही हानि हुई, और दस में से नौ में आया उसकी भी एक की हानि हो गई, परंतु दो से एक में आया तो उसके तो आधा हो गया, और यहाँ तो वन टेंथ कम हो गया उसका, वो इसलिए उसको जघन्य हानि दी। नहीं तो ऐसा देखेंगे तो कहीं पर भी होगा ना, पांच वाला चार हो गया, जो कुछ है होता है, परंतु वो कितना था और कितने परसेंट उसका कम हुआ उसको यहाँ हानि में ले लिया। जघन्य हानि में भी दस वाला नौ की करने लगा तो जघन्य हानि होती है। किसी एक जगह जघन्य अवस्थान होता है, इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है। अभी जहां मिथ्या तो गुणस्थान ही नहीं है वहां क्या कहेंगे? अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जघन्य वृद्धि किसके होती है? आठ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव नौ की उदीर्णा करता है। चौथे गुणस्थान वाले में नौ आठ सात छह चार स्थान होते हैं, उसके जघन्य वृद्धि होती है। और जघन्य हानि किसके होती है? नौ की उदीर्णा करने वाला जो अन्यतर जीव आठ की उदीर्णा करता है उसके जघन्य हानि होती है। किसी एक जगह जघन्य अवस्थान होता है, इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अल्प बहुत्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यानी अभी हमने जो उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है कि उत्कृष्ट हानि ज्यादा है, उत्कृष्ट वृद्धि ओघ में हमने कहां से कहां देखी थी? एक से आठ हो गए, और हानि में कितने? नौ से चार देखे थे ना, क्या देखा था? संयमी हुआ था ना। हाँ, तो यहाँ पूछेंगे वृद्धि ज्यादा हुई कि हानि ज्यादा हुई, उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है क्या उत्कृष्ट हानि ज्यादा है? उत्कृष्ट वृद्धि में कितना डिफरेंस पड़ा? एक से आठ हो गए, और हानि में नौ से चार हो गए। तो अभी यहाँ बताएंगे उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है, क्योंकि नौ से चार तक आ गए थे। उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान दोनों समान होकर विशेष अधिक है। हमने देखा था ना, देखी हमने यहाँ देखी थी, ये उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ओघ में? एक वाला आठ करने लगा, और हानि में नौ वाला चार करने लगा। देखो, एक से आठ हुआ, सेवन बढ़ गया, इतना तो बढ़ देखो अभी, और नौ से ये वृद्धि हो गई, और हानि में नौ से चार हो गया, ये पांच। तो पांच और सात में कितना? दो का डिफरेंस है, थोड़ा सा कम। विशेष वृद्धि विशेष अधिक है या हानि अल्प है, इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है। पंचेंद्रिय तीरंज अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, और अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट वृद्धि हानि और अवस्थान तीनों ही समान है। वे तो मिथ्या दृष्टि थे और ये सारे समय दृष्टि है, तो दो का ही डिफरेंस होगा हानि में भी वृद्धि में भी, इसलिए कहते हो तीनों समान है। मंजू बेन ख्याल में आई बात? पंचेंद्रिय तीरंज अपर्याप्त तो मिथ्या दृष्टि है, उसमें होगा तो दो का ही डिफरेंस, दस में से आठ हो गए या आठ में से दस हो जाएगा, तो हानि भी उतनी है, उत्कृष्ट वृद्धि भी उतनी ही है, अवस्थान तो उसके बाद कहेंगे, यानी वो भी उतना ही है, तो तीनों को समान कहेंगे। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में वहां भी उतना ही उत्कृष्ट। हाँ, दो का डिफरेंस। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान तीनों ही समान है, क्योंकि हमने जघन्य एक की बात देखी थी ना, एक की वृद्धि एक की हानि। ओघ की अपेक्षा तो हमने 9 से 10 और 10 से 9 ऐसा ही देखा था। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए तथा इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार पद निक्षेप समाप्त हुआ। पद निक्षेप में मात्र उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और अवस्थान की बात करते हैं, और उसमें तीन ही अनुयोग द्वार, पहले में होते है बताया, फिर स्वामित्व बताया और अल्पभूत बताया। अब वृद्धि का प्रकरण, वृद्धि उदीर्णा का प्रकरण। भुजगार में तो बस बढ़ता इतना ही कहा, पदनिक्षेप में उत्कृष्ट वृद्धि हानि उसकी बात की। अब यहाँ कहते वृद्धि उदीर्णा का प्रकरण, ये वृद्धि कितनी गुणा है, कितने भाग प्रमाण है उसकी बात करें। उसमें समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुतों तक ये 13 अनुयोग द्वार है। समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, यानी समुत्कीर्तना में वृद्धि वाला पहला अधिकार। ओघ और आदेश। ओघ से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि, अवस्थित और अवक्तव्य उदीर्णा है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। आदेश से ये संख्या गुण वृद्धि होगी, एक से दो हो जाएगी तो 2 से 1 हो जाएगा तो संख्या तो गुणा हानि होगी। 2 गुना हानि हो जाएगी तो संख्या तो गुणा हानि हो गई उसकी। तो ये मनुष्य त्रिक में ही मात्र लिया है, क्योंकि उपशम श्रेणी में यही घटित हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित उदीर्णा है। 10 से 9 हो गया तो संख्यातवा भाग कम हुआ, 10वा भाग कम हुआ। इसी प्रकार सब नारकी, पंचेन्द्रियतिरंच पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में जानना चाहिए। सामान्य तिर्यंच और पंचेन्द्र तिर्यंच त्रिक में संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, ये संख्यात गुण वृद्धि तिर्यंच में बताओ 5 से 10 हो गया ना। औक्षमिक समय दृष्टि था, उसके बाद में मिथ्यात्व में चला गया, तो 5 का 10 हुआ तो संख्यात गुणा वृद्धि हो गई। नारकियों में तो ऐसे नहीं थे, वो 6 से 10 हुआ था। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब स्वामित्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, यानी ये वृद्धि का दूसरा अनुयोग। फिर निर्देश दो प्रकार का ओघ और आदेश। ओघ से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि और अवस्थान किसके होते हैं, तो कहते अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। संख्यात गुणहानि किसके होती है, अन्यतर सम्यक दृष्टि के होती है। यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि इतना ही स्वामित्व लिया, क्योंकि उस श्रेणी में हो गया 2 से 4 से 2 हो जाएगा और 2 से 1 हो जाएगा। 4 से 2 हुआ वो भी संख्यात गुणहानि हुई, 2 से 1 हुआ वो भी संख्यात गुणहानि। अवक्तव्य उदीर्णा का भंग भुजगार के समान है। अवक्तव्य किसके हो गए? सम्यक दृष्टि के ही होगा ना, यानी श्रेणी से उतरते हुए होगा। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, सब नारकी, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में भुजगार के समान भंग है। यह अवक्तव्य तो होगा ही नहीं। सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भुजगार के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि किसके होती है? अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती है, यानी जब वृद्धि हुई तो मिथ्या दृष्टि हो गया था वो, इसलिए अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होती क्या। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। ये ला के ऊपर कुछ पेपर में है कि प्रिंट में आया है? ओवर आदेश, ये वृद्धि का तीसरा अनुयोग है। यानी काल यानी लगातार किसी एक वृद्धि का लगातार काल की बात करी। ओग से संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। जैसे हमने भुजगार के चार समय देखे थे वैसे यहाँ घटित होगा। भुजगार के हाँ उन्होंने लिखा है नीचे, विशेषार्थ में होगा तब पढ़ेंगे भी हम। संख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है, जो हमने अल्पतर में देखे थे। अवस्थित उदीर्णा का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त तक लगातार उतने का उदय चलता रहेगा, उदीर्णा भी उतनी होगी। संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यात गुण वृद्धि हुई यानी एक से दो हो गए, हाँ मरण होकर देव में गया तो दो से आठ हो गए, आठ हो गए तो संख्यात गुणा वृद्धि हो गई। संख्यात गुणहानि और अवक्ते उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि चार से दो हो जाएगा तो दो लगातार चलता रहेगा, फिर बाद में जाके एक हो जाएगा, इमीडिएटली एक एक समय में नहीं पलटेगा, इसलिए उसका काल एक ही समय है। काल करते हैं लगातार होने का काल। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ओग से देखेंगे तो एक से दो हो गया और दो से देव में जाके आठ हुआ, वो तो दो समय ओग से हुआ था, परंतु मनुष्यों में रहते हुए एक ही समय होगा, एक से दो हुआ और दो से चार हुआ, तो एक से दो हुआ तो एक समय के लिए हुआ, फिर लगातार दो दो प्रकृति का चलेगा अवश्य, फिर जाके दो से चार हो जाएगा अंतर्मूर्त के बाद, इमीडिएट एक एक समय में नहीं होगा, इसलिए काल एक समय का ही कहा। ख्याल में ही बात। सब नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में भुजगार के समान भंग है। सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भुजगार के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। पांच से दस हो गया तो एक ही समय के लिए होगा। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। अब उन्होंने विशेषार्थ में फिर पहले की याद दिलाई हमें। विशेषार्थ, पहले भुजगारानुगम में भुजगार उदीर्णा का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय, अल्पतर उदीर्णा का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय, तथा अवस्थित पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त घटित करके बतला आए है, वही यहाँ पर क्रम से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, वृद्धि यानी भुजकार जैसा, संख्यात भाग हानि यानी अल्पतर जैसा, और अवस्थित उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए। अभी ये याद आने के लिए हम देखेंगे भुजकार में काल, हम देखेंगे। ये उत्कृष्ट काल चार समय उन्होंने भुजकार में कैसा घटित किया था, पेज नंबर 86 हम पढ़ेंगे, आप सुनना। और अल्पतर का 87 में होगा। ये उत्कृष्ट काल चार समय उन्होंने बताया, या तो प्रमत्त संयत है, या संयता संयत है, या असंयत है। प्रमत्त संयता ने छठे वाला चार प्रकृतियों की, पांचवे गुणस्थान वाला पांच प्रकृतियों की, और असंयत वाला छह प्रकृतियों की उदीर्णा करते हुए स्थित है, यानी औक्षमिक समय दृष्टि, हम भय और जिगुप्सा दोनों नहीं है ऐसे जीव लिए। एक समय बाकी था उपशम सम्यक्त्व में, तो सासादन में आ गए। तो सासादन में आने से क्या हुआ, क्या बढ़ा, अनंत अनुबंधी का उदय उदीर्णा शुरू हो गया। तो वहां एक भुजगार हुआ। नेक्स्ट समय में मिथ्यात्व में आए, तो मिथ्यात्व का भी उदय शुरू हुआ, तो और एक प्रकृति बढ़ी। तो ये दूसरा समय हुआ भुजगार का। फिर उसके पश्चात वाले समय में भय चालू हो गया, भय की उदीर्णा शुरू हो गई, ये तीसरा भुजगार हुआ। और चौथे समय में जुगुप्सा का भी शुरू हुआ, तो ये चौथा समय भुजगार का हुआ। ऐसे यहां पर भी ले सकते हैं, संख्यात भाग वृद्धि की बात है, क्योंकि हम प्रमत संयत वाली बात देखते थे, वो चार वाला था, चार से पांच हुआ, पांच से छह हुआ, छह से सात हुआ, इस तरह से उसको ले सकते हैं। चार से पांच नहीं होगा, सॉरी, चार से वो यानी वो छठे से मिथ्या तो मिलाना है उसको ना। पहले छठे से दूसरे में आया, छठे में एक ही संज्वलन था, अभी यहाँ तो दूसरे में चारों कषाय चौकड़ी हो गई, यानी तीन प्रकृतियां वहां बढ़ गई, और फिर मिथ्या तो में आने पर एक बढ़ गई। ये चार से सात और सात से आठ ऐसा हो गया, ये हम अभी देख रहे थे। अल्पतर में भी उन्होंने ऐसा ही बताया है, उत्कृष्ट काल तीन समय इस तरह से बताए थे 87 पेज पर। 87 है आपके पास निकाला हुआ, तो उसमें 10 प्रकृतियों की उदीर्णा, नहीं नहीं आप सुनना केवल, 10 की उदीर्णा है, भय की विच्छित्ति हो जाने पर 9 की उदीर्णा करने लगा, और उसके बाद हाँ जुगुप्सा की उदय विच्छित्ति हुई तो 8 की करने लगा, और उसके बाद सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। तो मिथ्या तो अनंत अनुबंधी भी उदय की ये उदय उदीर्णा रुक गई उसके, वो तीसरा अल्पतर समय हो गया। इस तरह से वहां हमने ले लिया था, यही बात यहाँ विशेषार्थ में बताई 104 पृष्ठ पर आते वापस। छठे से सातवें से कोई जाता नहीं, छठे गुणस्थान से, छठे गुणस्थान से उसके चार प्रकृति वाला था, फिर दूसरे में आया, वहां संज्वलन एक ही था ना, अभी तीन यानी चारों कषाय चौकड़ी हो गए, यानी तीन बढ़ गए उसके, और फिर उसके बाद मिथ्या तो मिल गया, यानी पहले चार वाला था, फिर सात वाला हो गया, फिर आठ वाला हो गया, फिर उसके हाँ भय भी आया, और फिर जुगुप्सा भी आ गया। हम विशेषार्थ पढ़ रहे थे, जो उपशामक पांचवी लाइन उतरते समय मिला, अन्यतम संज्वलन की उदीर्णा करता हुआ मरकर देव होने पर आठ की उदीर्णा करने लगता है। यानी एक प्रकृति का स्थान था, उसमें से आठ वाला हो गया। उसके संख्यात गुण वृद्धि का जगने काल एक समय प्राप्त होता है, यानी एक से आठ वाला हो गया। और जो उपशामक उतरते समय अन्यतम संज्वलन की उदीर्णा करता हुआ अन्यतम वेद के साथ दो की उदीर्णा करता है और तदनंतर समय में मरकर देव होने पर आठ की उदीर्णा करने लगता है, उसके संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता है। ये समझ में आई बात? देखो, पहले एक से दो हुआ और एक ही समय में देव में चला गया, यानी एक समय में एक से दो हुआ और दूसरे समय में मरकर देव हुआ, यानी एक से दो और दो से आठ, यानी वो लगातार दो समय हो गए। यही कारण है यहाँ पर संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। जो मिथ्या दृष्टि जीव नौ की उदीर्णा करता हुआ अनंतर समय में संयत होकर चार की उदीर्णा करने लगता है, उसके संख्यात गुणहानि का काल एक समय प्राप्त होने से यह इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। यानी नौ से वो चार तक आ गया, आधे से भी कम हुआ ना, तो संख्यात गुणहानि कह दी। जो किसी भी प्रकृति का उदीर्णा नहीं करने वाला उपशांत मोह जीव गिरकर दसवें गुणस्थान में एक की उदीर्णा करने लगता है, उसके अवक्तव्य उदीर्णा का काल एक समय मात्र प्राप्त होने से इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। यानी जीरो में से वो एक में आया, मान लेते ग्यारहवें में मरकर भी चौथे में हो जाएगा तो भी उसका एक समय ही होगा अवक्तव्य का। मनुष्य त्रिक में यह ओह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओह के समान जानने की सूचना की है। मात्र संख्यात गुणवृद्धि उदीर्णा का उत्कृष्ट काल ओह प्ररूपणा में दो गतियों की अपेक्षा घटित करके बतलाया गया है, जो मनुष्य त्रिक में संभव नहीं। संख्यात गुणा दो गतियों की अपेक्षा कितने समय तक किया उन्होंने अभी अभी? हाँ लक्ष्मी, यहाँ क्या कहा? संख्यात गुण वृद्धि का उत्कृष्ट काल ओह प्ररूपणा में दो गतियों की अपेक्षा बताया, तो संख्यात गुण वृद्धि का लगातार उत्कृष्ट काल कितना बताया था अभी अभी? दो समय, एक से दो हुआ, दो से आठ हुआ। कहाँ पर? हाँ, संख्यात गुण हो जाएगा, परंतु वो दो गति की अपेक्षा ही होगा, मनुष्य में रहते हुए एक ही समय घटित होगा। तो मनुष्य त्रिक में वो संभव नहीं है, इसलिए इनमें उक्त पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मंजूबेन ख्याल में आती बात? देखो, उतरते हुए श्रेणी उतरते हुए एक प्रकृति का चल रहा था, लगातार नौवे गुणस्थान में आए तो एक 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 प्रकृति चल रही थी, फिर वेद सवेद भाग में आते ही दो प्रकृतियों का उदय शुरू हुआ, यानी एक समय के लिए दो हुआ, फिर एक समय के पश्चात मरकर देव हुआ तो दो से आठ हुआ, यानी एक समय में एक से दो हुआ, दूसरे समय में दो से आठ हुआ। एक एक समय में वृद्धि लेना है, पहले समय में एक से दो हुआ, दूसरे समय में दो से आठ हुआ, तो दो गतियों में घटित होता है। परंतु मनुष्यों में रहते हुए एक से दो हुआ तो लगातार दो का अंतर्मुहूर्त तो चलेगा, फिर जाके दो से चार हो जाएगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में पांच की उदीर्णा करने वाला जो संयता संयत जीव मिथ्यात्व में जाकर दस की उदीर्णा करने लगता है, उसके संख्यात गुण वृद्धि का काल मात्र एक समय प्राप्त होने से यहाँ पर इन तीनों प्रकार के तिर्यंचों में इस पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। शेष कथन बुजगार उदीरणा के समान होने से उसे दृष्टिपथ में लाकर यहाँ घटित कर लेना चाहिए, जो हमने भी वहां देखा था। पुनरुक्त दोष के भय से यहाँ पर हमने उसका अलग से निर्देश नहीं किया है। ये तो काल की अपेक्षा बात हुई, अब अंतरानुगम की बात करेंगे। ये वृद्धि अनुयोग नंबर 4। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से संख्यात भाग वृद्धि, अब उसमें अंतर देखना है। एक बार संख्यात कोई भी विशिष्ट भाग वृद्धि हुई तो बाद में संख्यात गुण वृद्धि हो गए या अन्य हानि हो गए, उसको कंसीडर, यानी उसका लंबा जितना लंबा हो उसको हम अंतर कहेंगे। दोबारा जाकर फिर संख्यात भाग वृद्धि होने तक उसको अंतर कहेंगे। तो ओघ से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, अवस्थित और अवक्तव्य उदीरणा का भंग भुजगार उदीरणा के समान है। ये भुजगार उदीरणा में हम देखेंगे, यानी भुजगार उदीरणा का जो अंतर है, अभी हमने 87 में देखा था ना, काल देखा था, उसी के आगे अंतर होना चाहिए। 98 पृष्ठ पर है वो। भुजगार का अंतरकाल नहीं है कहा था, अभी यहां देखेंगे हम किसका किसका नहीं है। तो संख्यात भाग, परंतु ये नाना जी उनके अपेक्षा, एक बात एक जीव की अपेक्षा देख रहे थे हम, वो 89 पर है। यानी भुजगार का उन्होंने एक समय प्राप्त किया था, किसे एक से दो हो गया और फिर अंतर्मूर्त था। परंतु यहाँ देखो, यानी भुजगार कब हुआ, एक से दो हुआ तो भुजगार हुआ, फिर एक समय के लिए वो अवस्थित रहा। लगातार भुजगार नहीं करना है, उसका अंतर करना है। तो मिनिमम अंतर एक समय कैसे होगा, एक समय के लिए अवस्थित हुआ फिर 2 से 8 हुआ। काल में हमने क्या किया था, बीच में अंतर छोड़े बिना हमने काल लिया कि 1 से 2 हुआ, 2 से 8 हुआ। यहाँ 1 से 2 हुआ, ये भुजगार हुआ, फिर अवस्थित रहा एक समय के लिए और बाद में मरकर 2 से 8 हुआ, से भुजगार का एक समय अंतर घटित किया था। वैसे यहाँ बता रहे हैं संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा था उन्होंने, और अवस्थित अवक्तव्य उदीरणा का भंग उदीरणा। अब यहाँ बता रहे हैं संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त है। यानी संख्यात गुणहानि होने के लिए अंतर्मूर्त है, संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए एक समय है अंतर। जैसे अभी हमने देखा 1 से 2 हो गया, फिर एक समय के लिए अवस्थित रहा, वो अवस्थित है वो भुजगार का अंतर है, फिर 2 से 8 हुआ, ये संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य अंतर एक समय हुआ। अब संख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। संख्यात गुणहानि चार से दो हो गया, तो दो लगातार अंतर्मूर्त रहेगा, फिर दो से एक हो जाएगा, इसलिए उसका अंतर्मूर्त ले लिया। एक क्रम से शब्द डाला है ना बीच में, तथा दोनों का उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। मैंने इतने काल तक श्रेणी ही नहीं मान ली, संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुणहानि तो तभी हाँ श्रेणी में हो सकता है। या हमने देखा था संख्यात गुण वृद्धि वो 5 से 10 हो गया पीएचओं में, वो भी उसने नहीं किया इतने काल तक बीच में। सब नारकी पंचेंद्रिय तीरेंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में भुजगार उदीर्णा के समान भंग है। अभी हमने देखे थे ना वहां पढ़ा, सामान्य तीरियंच और पंचेंद्रिय तीरियंच त्रिक में भुजगार उदीर्णा के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि सामान्य तीरियंचों में संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं? ये कौन बताएगा? प्रेरणा बिना बताएगी? हाँ, तीरियंचों में सामान्य तीरियंचों में संख्यात गुण वृद्धि का जघन्य अंतर पल्ले के संख्या से भाग। लक्ष्मी आप बताना। मंजू किसका? नहीं नहीं नहीं, अपर्याप्त की बात नहीं, सामान्य तीरियंचों में संख्यात गुण वृद्धि कब होती है? हाँ तो ये दो औपशमिक प्रथमोपशम सम्यक दो में अंतर कितना है? मिनिमम अंतर, मैक्सिमम नहीं, पल्ले का संख्या तो होगा, क्योंकि औपशमिक सम्यक में उसने 5 का स्थान से मिथ्यात्व में आके 10 में गया था, ये फिर दोबारा कब पॉसिबल है? पल्ले के असंख्यात भाग के अंतर से, वो मिनिमम अंतर है। मैक्सिमम कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन। हाँ हाँ, तीरियंच में तो रह सकता है, अन्य गतियों में तो नहीं रह सकता, लगातार तीरियंच में ही रहा, पांचवा गुणस्थान प्राप्त करके मिथ्यात्व में गया और लगातार फिर एकेंद्रीय में भेजना उसको, फिर तीरियंच में ही उसने सम्यक तो प्राप्त किया। देखो यानी वहां पर भी कैसे 5 लब्धि होगी ना उसको प्रथम उपशम में, तीरियंच में रहते हुए। हम तो क्या कहते हैं तीरियंच में कैसा, तो दो भाव पहले की उसको देशना ही आए, ये डायरेक्ट तीरियंच में ही रहा है अर्धपुद्गल परावर्तन तक। पल्ले के असंख्यात विभाग पहले वाली पहली बार होने दो ना, दूसरी बार हुआ तब अरे अरे वाह, ये इतना लंबा काल बीच में एकेंद्रिय में गया है। प्रथमोपशम जब जब होगा, पहली बार ऐसे नहीं कहा, प्रथमोपशम जब जब होता है तब पांचों लब्धि होती ही है। अब यथायोग्य देखो, बाकी एनिमल्स भी ट्रेन हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमें ऐसा एक ऐसा उपदेश मिलता होगा, उनकी भाषा में कौन करता होगा। वैसे तो उनमें भी संगी पंचेंद्रिय है, कुछ समझने की तो है कि नहीं, तीर्थंकर के समोचरण में कैसे समझते हो? समझ लेना, वो समोचरण में चला गया या मुनियों की भी बात आती है, कैसे समझाया होगा। हाँ अभी आगे वो कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। देखो कल आज तो अनवीन भाई ने बताई हुई वो लिखी हुई बात पढ़ी ना आपने, शायिक सम्यक तो होता है तो केवली तीर्थंकर के और केवली के पादमूल में उनके निकट में होता है, तो कहते उनके उपदेश सुनने की भी मुख्यता नहीं है, उनके प्रेजेंस में इतना इसकी विशुद्धि बढ़ सकती है। बढ़ती तो अपने से है, निमित्त से नहीं होती है, फिर यहाँ से निमित्त का ही कथन करेंगे ना, करना नहीं होगा। नियमसार में ये बात आई है इसे ज्ञानी के उपदेश के बारे में, तो ज्ञानी के जो मोहनीय का जो क्षोभम क्षय जो कुछ हुआ है उसकी अपेक्षा लिया वहां, तो उसके उपदेश की भी अपेक्षा नहीं ली है। यानी उपदेश यानी वो डायरेक्ट भाषा में नहीं, बाकी उनको देखने से उनके वो सारे जो इनकी विशुद्धि जो बढ़ती है ये अंदर से पता चल जाता है ना। देखो कोई आपको क्विज है, कोई पजल है, किसी ने आपको उपदेश नहीं दिया है कैसा सॉल्व करना, फिर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अरे एनिमल्स भी, उन पर ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, चूहे है चिड़िया है या अंदर ऐसे कुछ, ऐसे उनको ऐसे अटपटे उसमें रखते हैं फिर भी उसमें से वो रास्ता ढूंढ निकालते बाहर आने का, वहां तो किसी ने उनको समझाया नहीं है, मगर माइंड का बुद्धि का वहां प्रयोग होता है, संगी पंचेंद्रिय है तो उसमें से वो ढूंढ लेते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। समझते तो अपने से पहले मूल में वो बात रखकर फिर बात में बाकी बाद में उपचार से होती है, फिर भी जो कुछ होता है उसका ज्ञान किया जाता है। परंतु ऐसी बातें होती है हम पढ़ते हैं तो निमित्ताधीन जो दृष्टि वाले उनका वो पुष्ट होता है, देखो यह है कि नहीं, निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ। वो क्षोभम बढ़ने से वो भी निमित्त की तरफ से है, उसकी अपनी उस समय की योग्यता, क्योंकि क्षोभम बढ़ना वहां भी कर्मों की अपेक्षा आ जाएगी, वो भी निमित्त में चला जाएगा। तो कर्म का भी निमित्त और बाह्य पुस्तक का संयोग है, शिक्षक का संयोग है, वो भी बाह्य निमित्त। निमित्तों की चर्चा करनी है तो वो होते हैं, परंतु कार्य तो अपने से होता है, मुख्य में ये बात ले। नहीं नहीं ज्ञान की बात चल रही है, क्षोभम वो भी बढ़, क्षोभम बढ़ गया ना क्या, ज्ञान की पर्याय कुछ अलग हो गई, वो भी अपने से हो गया, यानी ज्ञान का क्षोभम बढ़ा, यानी कर्मों की ओर से नहीं परंतु ज्ञान की अपनी योग्यता, वो तो अपने से ही होती है, मुख्यता ये लेना, नहीं तो फिर ये क्यों हुआ, फिर कर्मों का क्षोभम कैसे हुआ, ऐसा नहीं, फिर उसमें बाह्य निमित्त क्या, फिर उसके निमित्त के लिए और दूसरा निमित्त ढूंढो, फिर ये श्रृंखला चलती रहेगी।
तो हाँ
फिर भी ऐसा होता है ना लोगों के, नहीं आप कुछ भी कहो ये तो ठीक है, परंतु ऐसा होता है ना, ऐसा वहाँ भी पूछते थे ना वो लोग, नहीं ये तो सब ठीक है परंतु फिर हम क्या करें, घूम फिर कर बात कहाँ आती है, लोग पूछते हैं स्पेशली हम तो फिर हम क्या करें, समता भाव रखे कि नहीं रखे, परंतु समता भाव किसको कहना वही पता नहीं ना, यानी वो गुस्से वाली पोजीशन आ जाए और हम गुस्सा नहीं करें उसको हम कुछ समता भाव समझते हैं, नहीं ऐसे ही लोगों की समझ ऐसी ही है। करने का भाव आना अलग है और करने मैं कर सकता हूँ ये बुद्धि अलग है,
क्या करना
नहीं, इनका अश्विन भाई का प्रश्न अलग है। हाँ, वहाँ की बात है तो क्या आप कहते ना, करने का भाव तो आता है कि हमें मालूम है तो भी कि सम्यक दृष्टि को नहीं आएगा, आएगा, परंतु करने की बुद्धि नहीं। बुद्धि का अर्थ क्या है, मैं कर सकता हूँ, ये मान्यता नहीं, अभिप्राय नहीं है, फिर भी भाव आता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं हम, ये जो कुम्हार है वो चाक घुमाया उसने, जो हम कहेंगे ना, यानी जिसको कहेंगे ना सोच समझ कर उसने किया, क्या किया, वो लकड़ी से बराबर घुमाकर वो चाक घूम रहा है, अभी उसने हाथ निकाल दिया फिर घूम रहा है। ऐसे ही कर्तृत्व बुद्धि का हाथ निकाल दिया जीव ने, यानी समय दृष्टि हुआ, फिर भी वो घूमना यानी वो करने का भाव आना वो चल रहा है, राग आ रहा है, परंतु राग का मैं करता हूं ये बुद्धि अभी नहीं रही। पहले कैसा था, अज्ञान में राग का कर्ता होकर वो कर रहा था, अब राग आता है वो भी कौन सा, अन्य तीन चशाई चौकड़ी वाला, अनंतानुबंधी वाला नहीं है, और उसका स्वामित्व नहीं रहा, तो आने वाले राग को जानता है, वहां भी राग को कम करूं ऐसे भी नहीं है कोशिश। ये लोगों को ख्याल में नहीं आता, यानी क्रोध मान मायलोभ जो कुछ है हम उसको रोके कि नहीं रोके, क्या करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए ने हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये अभी अभिप्राय पड़ा है, तो ये प्रश्न ही उठता है, वो ही समझाता है कि अभी यहाँ निर्णय नहीं है। प्रश्न के ऊपर से ही पोजीशन ख्याल में आती है ना, वो जीव कहाँ खड़ा है, यानी क्या करना चाहिए, हर एक का प्रश्न है। जब तक समय तो नहीं होता, क्या करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए वाली बातें होती है ना, वहाँ तो शुभ होगा या अशुभ होगा,
वैसे वहाँ के लोग हम क्या करें,
हम क्या करें,
शुभ या अशुभ करना मैं कर सकता हूँ ये मान्यता छूटी नहीं ना,
क्रोध आता है तो क्या करें, या ऐसा ऐसा होता है तो दूसरा तो परेशान करता है तो क्या करें, तो समता भाव रखे कि नहीं रखे, यानी यहाँ तो मैं जीव हूँ, पहले में पहले ये सोच कर विचार करना है, इनके सारे जो विचारधारा ये चलते, मैं मनुष्य हूँ होता है शुरू में, जब तत्वज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो मनुष्य पर्याय वाली बातें बार बार सोचते हैं, जहाँ मैं जीव हूँ सोचकर, मैं ज्ञायक हूँ सोचकर बात विचारधारा है वो अलग है, मैं मनुष्य हूँ ऐसा हमने सोच लिया तो फिर उसके कर्तव्य याद आ जाएंगे, फिर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर बच्चों को क्या करना, छोड़ देना का हवा पर छोड़ देना, इन कंफ्यूजन नहीं है, परंतु शुरू में ऐसे घोटाले हो सकते हैं और वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक अभी वो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, सम्यक तो नहीं हुआ है, तो शुरू में तो ऐसे घोटाले हो गए, जैसे बालक चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता भी है ना, तो इसके भी भले नहीं ऐसे घोटाले हो जाए, जब तक तत्व ज्ञान की मुख्यता रहेगी, तत्व ज्ञान की उसकी गहराई मर्म ख्याल में, गहराई की बात ऐसा नहीं बहुत अभ्यास करेंगे बहुत शास्त्र पढ़ेंगे तो नहीं, उसका मर्म पकड़ना चाहिए, वो है तो आसान, जो मर्म ही छूट जाए तो फिर वो बहुत पूरा गोल 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 घूमता रहता है। हाँ चलो, ये हमने अंतर देख रहे थे तीन अंशों में, वहां से बात निकली ना, उत्कृष्ट अंतर संख्यात गुण वृद्धि का, यानी पांच में से दस होने का, पांच का दस कब हुआ, उसका औषमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व में गया, तो यह उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परावर्तन। पंचेन ये तिरियंच त्रिक में संख्यात गुण वृद्धि का अंतरकाल नहीं है, इसका अर्थ बताओ भी मंजू, बहुत आसान है, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में रहते हुए मैंने शब्द डाला, संख्यात गुण वृद्धि का अंतरकाल नहीं है, इसका अर्थ मुझे चाहिए। मयंक भाई बताएंगे आप, अभी अभी इनको बताने दो। हाँ
Gracias.
हाँ बताओ।
ये तो कर्म बुद्धि की बात है।
हाँ
तो वो एक ही एक में एक ही बार प्रथम प्राप्त करेगा, पांचवी गुणस्तर प्राप्त करेगा और नीचे चल जाएगा तो वापस।
एक ही भाव की बात क्यों करते, बार बार भाव दे दो ना उसको, अनेक भाव भी हो जाएंगे तो कितने हो गए, पृथक तो कोटि पूर्व हो गए, पृथक तो कोटि पूर्व काल, ये तो संख्यात वर्ष है और पल्य का असंख्यात भाग को असंख्यात वर्ष है, तो पंचमी तिरिय त्रिक में रहते हुए की बात है। उत्कृष्ट तो संख्यात गुणवृद्धि का अंतर काल नहीं है, अर्थ क्या है, संख्यात गुणवृद्धि तो होगी परंतु एक बार नहीं हुई है। पर यहाँ भोग भूमि वाले को क्यों नहीं लिया, पांचवा गुणस्थान की बात है इसलिए, क्योंकि भोग भूमि वाले में अगर होगा तो भी क्या होगा, चौथा होगा, चौथा में कितना होगा उसका, नहीं नहीं देव में नहीं, वो तो तीन पल्ले ना, और पल्ले के असंख्यात विभाग काल में तो प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, फिर भी वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये पांच में से दस में गया था, तो छह से दस में संख्यात गुणा नहीं कहेंगे, ख्याल में आई बात, पांचवे गुणस्थान में पांच से दस हो वो मिथ्यात्व तो में गया तो पांच से दस हुआ था, ये कहाँ हुआ है, कर्म भूमि में, तो कर्म भूमि में आप लगातार रखो ना तीरियंचों को, तो पृथत्व कोटि पूर्व ही होगा, वो संख्यात वर्ष है, और जो पल्ल्य तीन पल्ले वगैरह है वहां तो चौथा ही गुणस्थान है, वहां संख्यात गुण वृद्धि होती नहीं है। यानी हम एक एक पॉइंट पर विचार करेंगे ना तो ख्याल में आता है, ऐसा प्रश्न अरे तीन पल्ले में तो हो सकता है, प्रथम ऑप्शन सम्यक तो अनेक बार हो सकता है, फिर भी उसको क्यों नहीं लिया, वो तो संख्यात भाग वृद्धि होगी, गुण वृद्धि नहीं होगी। बैंग भाई ख्याल में आती है ना बात, हाँ मनुष्य त्रिक में भुजगार उदीर्णा के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि एक बार संख्यात गुणवृद्धि हुई फिर और होने के लिए अंतर्मुहूर्त काल बीच में चला जाएगा, एक से दो हुआ तो दो से चार होने में अंतर्मुहूर्त लगेगा, संख्यात गुणहानि में भी ऐसा ही लेना, चार से दो हुआ दो से एक हुआ, अवक्तव्य के लिए भी एक बार उतरा फिर दोबारा चढ़ के उतरा अंतर्मुहूर्त का अंतर हुआ, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यानी मनुष्य का एक भाव किया उसमें लगातार पृथक्त्व कोटि में अंतिम भाव में फिर उसने किया तो ये हो गए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा, ये आर्गणा हुआ है, मार्गणा करो 105 पर आए हम, नीचे से चौथी लाइन में यार्गणा हुआ है, मार्गणा लिखना, और उसी के दो लाइन ऊपर विशेषता हुआ, वहां विशेषता किया था हमने, ये ख्याल में आई बात। तीरियंचों में जब हमने देखा था तो पांच से दस होने के लिए तो कर्म भूमि का ही तीरियंच लेना है, पांचवा गुणस्थान वाला मिथ्यात्व में आता है, तो मनुष्यों में लेना है गुणवृद्धि के लिए तो वहां पर श्रेणी वाला लेना है, कहते इसी प्रकार अनाहार्थ मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ जो उपशांत मोह जीव गिरते समय एक की उदीर्णा करता हुआ अनंतर समय में दो की उदीर्णा एक समय के अंतर से मरकर देवों में उत्पन्न हो आठ की उदीर्णा करने लगता है, दो समय में दो की उदीर्णा करके चाहिए ना, बीच में कुछ रह गया, जो उपशांत मोह जीव गिरते समय एक की उदीर्णा करता हुआ अनंतर समय में दो की उदीर्णा करके करके शब्द डालो, एक समय के अंतर से मरकर देवों में उत्पन्न हो आठ की उदीरणा करने लगता है, उसके संख्यात गुणवृद्धि का जगन्य अंतर एक समय बन जाता है। ये अभी हमने देखा उसी का विशेषण। तथा जो मिथ्या दृष्टि जीव नौ की उदीरणा करता हुआ संयत हो चार की उदीरणा करके संख्यात गुणहानि करता है, पुनः वह अंतर्मूर्त बाद मिथ्यात्व में जाकर और अंतर्मूर्त के भीतर संयत हो नौ की उदीरणा के बाद चार की उदीरणा करने लगता है, उसके संख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त बन जाता है। ये ख्याल में आई बात? नौ से चार की फिर मिथ्यात्व में गया, फिर चढ़ा, संयत हुआ और फिर नौ से चार हुआ। यही कारण है यहाँ पर ओव से संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य अंतर एक समय और संख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा। गुणवृद्धि में एक समय के अंतर से कर सकता है और गुणहानि के लिए अंतर्मूर्त चाहिए। संख्यात गुणहानि का यह जघन्य अंतर दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़ने से भी प्राप्त किया जा सकता है, जो तो हमने भी देखा। यथा कोई उपशामक अपूर्वकरण जीव चार की उदीरणा करता हुआ अनिवृत्तिकरण हो दो की उदीरणा द्वारा संख्यात गुणहानि करता है, पुनः वह अंतर्मूर्त के भीतर संवेद चाहिए। सवेद भाग में दो की उदीरणा करता हुआ अवेद भाग में नपुंसक वेद की उदय विच्छित्ति कर एक की उदीरणा द्वारा संख्यात गुणहानि करता है, उसके संख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। नपुंसक वादे को क्यों लिया? उसके उदय विच्छित्ति का काल छोटा है, यहाँ जघन्य अंतर प्राप्त कराना था, दो से एक कराना था। पुरुष वेद वाला लेता तो और वो अंतर्मूर्त थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए यह नपुंसक वेद लिया। पूर्व में दिए गए उदाहरण की अपेक्षा इस दूसरे प्रकार में अंतरकाल का समय कम है, इसलिए यहाँ इसकी प्रधानता है। पहले वो संयत बनाया, फिर दोबारा नीचे लाया, फिर संयत बनाया, उसमें वो लंबा काल है। पिछला उदाहरण केवल अंतर का प्रकार बतलाने के लिए दिया है। इन दोनों पदों का उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यानी इतने लंबे काल तक उसने फिर वो संख्यात गुणहानि की नहीं। सामान्य तिर्यंचों में पांच की उदीरणा करने वाला जो जीव दस की उदीरणा करता है, वह उपशम सम्य दृष्टि संयता संयत से च्युत होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ जीव ही हो सकता है। और ऐसे जीव की यह अवस्था पुनः कम से कम पल्य का असंख्यात्वा भाग काल जाने पर और अधिक से अधिक उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल जाने पर ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पर उक्त जीवों में संख्यात गुणवृद्धि का जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण बतलाए। ये तो सामान्य तिर्यंचों में बात की थी। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की कर्म भूमि की अपेक्षा उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्व प्रमाण ही है। यानी ये तो संख्यात वर्ष है ना, पूर्व कोटि पृथक्व संख्यात वर्ष है, अतः इनमें दो बार संख्यात गुणवृद्धि का प्राप्त होना संभव न होने से इनमें उक्त पद के अंतरकाल का निषेध किया। ये बनेगा ही नहीं दोबारा प्रथम उपशम समय। मनुष्य त्रिक में अंतर्मूर्त के अंतर से दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़ना और उतरना संभव है, तथा पूर्व कोटि पृथक्व के अंतर से भी यह संभव है। ये उसका उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा। इसलिए इनमें संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर अंतर्मूल और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। यही रुकेंगे हम, क्योंकि आगे का भी नया अनुगम चालू हो जाएगा, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम। ये वृद्धि का मेरे ख्याल से पांचवा है ना, वृद्धि का पांचवा अधिकार होगा, वो कल ले लेंगे हम, यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लो पालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।